الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زمر، تفسير آيات نمبر 61 سے اینڈ تک، اس کے 75 تک. وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور بچا لے گا اللہ تعالیٰ. یونجی کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی کو، رفتہ رفتہ کسی کو نجات دے دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا کس سے، گناہوں سے بچا لے گا، نکال لے گا. الذین اتقوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اللہ تعالیٰ نکال لے گا گناہوں کی دلدل سے. جب ایک دفعہ انسان توبہ کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا توبہ استغفار کا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حسرتیں بھی بتائیں، تین حسرتیں بتائی گئیں یہاں پہ، یا حسرت علی ما فرطتم فی جنب اللہ، یا پھر ان اللہ ہدانی، تو انسان یہ دوسری حسرت کرے گا، یا پھر وہ کہے گا جب عذاب کو دیکھے گا ان علی قرتن، کہ میرے لیے دوبارہ واپسی ہو، یا مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، یا میں نے کتنی کمی کر لی اللہ کی اس میں، اگر میں نہ کرتا کمی تو آج میں بھی کوئی اچھی جگہ پہ ہوتا. تو اس طرح کی وہ حسرتیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی دو باتوں کا تو جواب دیا، تیسری کا جواب نہیں دیا. اور وہ قرآن کریم میں کئی دفعہ آتا ہے کہ جب انسان یہ خواہش کرے گا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دیا جائے، تو لوٹنے کا اس کا یہ چانس ختم ہو چکا، اب لوٹانا نہیں ہوگا. وہ بہت بہت دفعہ اس کا جواب آیا، اور پہلی دو باتوں کا جواب یہاں پہ آیت نمبر 59 پہ آ گیا. اب وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ پہ لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اللہ ان کو بچا لے گا. انسان ایک دفعہ فیصلہ تو کرے، اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح. تو اللہ جو متقی لوگ ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب کر دیتا ہے. اسی لیے بمفازتہم، ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، وہاں پہ بچا لے گا ان کو، دنیا میں گناہوں سے، آخرت میں عذاب سے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ کون سی چیز ہے جو کہ بچانے والی ہے انسان کو، وہ ہے تقوی. اور تقوی اتنی بڑی کوالٹی ہے جس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا، اور کئی دفعہ قرآن کریم میں تقوی کی صفت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ متقین ہی جنت میں جائیں گے، جنت گھر ہی متقیوں کا. یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ انہی کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، کامیابی کے ساتھ ان کو نجات دے دے گا. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا، کامیاب کر دے گا یعنی ان کو، اور کامیاب ہونے کی وجہ سے ان کو جنت میں جگہ دے گا. یا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ظرف زمان اگر اس کو لے مفاز کو، یعنی کامیابی کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی کامیاب ہونے کی جگہ میں ان کو داخل کر کے ان کو نجات دے دے گا. تو اب تقوی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ تقوی ایسے کیا خوبی ہے کہ جس کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کو نجات بھی دے گا اور جنت بھی دے گا. وہ خوبی ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں تقوی بالکل لے مینس لینگویج میں کیا چیز ہے، کہ ہمارے سامنے کوئی گناہ کا موقع ہو، ہم کر سکتے ہیں اس کو، لیکن ہم صرف کس لیے نہیں کرتے، کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جاتا ہے. اب تقوی کے نا لیولز ہیں، تقوی کے لیولز ہیں. کسی کا تقوی بہت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، کسی کا بالکل کم درجے کا. مثال کے طور پہ کم درجے کے تقوی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، مثلا انسان کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے چوری نہیں کرنی، इसलिए कि ये नहीं कि कानून का डर है, मसलन है कि ऐसी टाइम आ जाते हैं कई दफा कि बिजली भी चली जाती है, आपने देखा होगा यहाँ पे स्टोर्स में उस वक्त कितना लूट मार हो जाती है, जब उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं होता, लोग अंदर जा धमकते हैं और चीजें उठा के ले जाते हैं, इसलिए कि उनको जो डर पहले था वो कानून का था, जब कानून का डर खत्म हो गया तो फिर उन्होंने चोरी चकारी शुरू कर दी। इसी तरह बहुत दफा ऐसे होता है कि कानून की कोई चीज नहीं होती सामने, लेकिन उस वक्त अल्लाह का डर इंसान को रोक ले। अब इंसान मिसाल के तौर पे शराब उसके सामने है, एक आदमी शराब को हाथ नहीं लगाता, हालांकि वो सब पी रहे हैं वहां पे, वो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे शराब को बुरा समझा जाता हो, लेकिन वो क्यों नहीं हाथ लगा रहा कि नहीं अल्लाह ताला ने मना किया, ये गुनाह है, ये हराम है, ये है तकवा। अब इसके लेवल्स हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो फिर इंसान इससे भी डरने लगता है कि मैं झूठ कैसे बोलूं, मैं झूठ कैसे बोलूं, अल्लाह ताला ने झूठों के ऊपर तो लानत भेजी है, मैं कैसे लानत ज्यादा लोगों में से हो सकता हूं। अब ये जो तकवा है ये थोड़ा हायर लेवल का तकवा हो गया, अगर उससे भी हायर लेवल का तकवा, इंसान अपनी जुबान को हर उस बात से रोक लेता है जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, जो हराम है, जो बुरी है, और भी उससे भी ऊंचे लेवल के तकवे के लेवल्स और भी हैं, कई हम देखते हैं ऐसे बुजुर्गान गुजरे हैं जो जरा जरा सी बात के ऊपर, कि हमें ये भी कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा हक नहीं था, और अगर हमने मिसाल के तौर पे उनको कोई कह, ये एक सच्ची बात है, उनको कहा जा रहा है, उनको ट्रेन में बिठा दी, जब वो बैठ गए तो उनको टिकट चेक करने कहा कि मुझे कोई वो नहीं है, आप टिकट नहीं लें, आपके पास टिकट नहीं हो, या आप सामान ज्यादा भी लोड करा लें, तो इतना एहतराम करते थे कि वो कहते हम तो आपके आप हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन वो कहते नहीं आप तो उतर जाएंगे ना अगले उसके ऊपर, मेरी मंजिल आ जाएगी और ये हमारा मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के हाँ हमने जो अपने हक से ज्यादा ले लिया तो इसके ऊपर हमारी पूछ हो जाएगी। ये तो तकवा का बहुत आला लेवल है। पर इसी तरह इंसान अपनी नजर की हिफाजत करता है, और वहां पे जहां पे किसी को भी नहीं पता कि मेरी नजर यहाँ पे उठ गई तो कौन कोई देख थोड़ी रहा है, उस वक्त उसका तकवा है जो उसको रोक लेता है, नहीं मेरे अल्लाह ने मना किया, मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी नजरों की हिफाजत करूं, मैं कैसे अपनी नजरें ऐसी जगह पर डालूं, हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा, किसी को क्या पता किसकी नजर किधर जा रही है। इंसान के पास गीबत का मौका है लेकिन वो अपनी जुबान को रोक लेता है, नहीं, किस चीज की वजह से कि नहीं अल्लाह ताला ने मना किया। तो ये तकवे की मनाजिल है। इसी तरह नेकी के काम में बाज चीजें ऐसी समझी जाती हैं कि उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते माशरे में, उनको लोग बुरा समझते हैं या उनको आउटडेटेड समझते हैं या बैकवर्ड पेंडू फलां एक्सट्रीमिस्ट इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन तकवा क्या है, फिर वही कि ये नेकी है, ये मेरे अल्लाह को पसंद है तो मैं क्यों ना करूं। लोग कहने लगते मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये तो मस्जिद की तरफ ही भागते रहते हैं, क्योंकि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी इंसान नेकी के काम को इसलिए कर रहा है कि अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, तो ये नेकी करना और गुनाह से बचना, तकवा का वैसे मतलब बचने का है, जैसे ना वकीना आजाब अन्नार, बेकाया क्या होता है, बचना, ये गुनाह से बुराई से, एक बुराई ऐसी है जो माशरे में आम हो चुकी है, उससे बचना सिर्फ इसलिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह अल्लाह इससे नाराज हो जाएगा, सिर्फ ये चीज उसको बुराई से रोकती है, इसको तकवा कहते हैं। बहुत सी बुराइयां आज देखें कितनी आम है और उनको बुराई नहीं समझा जाता, बल्कि घरों में माशरे में आपकी सोसाइटी में अल्लाह माफ करे उन चीजों को अच्छा समझा जाता है। मिसाल के तौर पे औरतों की बेपर्दगी, इसको अच्छा समझा जाता है, मॉडर्निज्म समझा जाता है, और पर्दे वगैरह को क्या समझा जाता है, ये तो ऐसे ही, इनको तो शायद कुछ पता ही नहीं, और ये जो है ये जो बेपर्द लोग हैं ये खवातीन जो है ये बहुत आगे हैं, बहुत फैशनेबल हैं। तो उस वक्त आपका इस चीज को छोड़ना बेपर्दगी को और पर्दा कर लेना ये तकवा है। आपका दिल चाह रहा है कि आप अपनी ब्यूटी डिस्प्ले करें, आपका दिल चाह रहा है कि मैंने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़ा अच्छा मेकअप किया है, बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, और मेरे बाल भी आज मैंने बड़े अच्छे कटवाए हैं, मैं आप कि कोई देखे ना तो फायदा क्या फिर, तो आज तो मैं दिखाऊंगी। लेकिन कौन सी चीज़ आपको रोक लेती है? वो है तकवा। तो तकवा ऐसी कोई हवा की चीज नहीं है जो हवाई चीज है, हम मुत्तकीन मुत्तकीन पढ़ते रहे, तकवा तकवा पढ़ते रहे, मैं समझ ही ना आ रहा है कि प्रैक्टिकली हमने तकवा कैसे अचीव करना है, प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी में तकवा कैसे आए, या मैं चेक कैसे करूं कि तकवा है भी या नहीं है, या किस लेवल का तकवा है। एक सर्टन लेवल का तकवा तो आम मुसलमानों में भी होता है, नहीं मेरा किस लेवल का, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मेरा किस लेवल का तकवा है, मैं कहाँ पे पहुंची हूँ तकवा के मदारिज में, कितनी सीढ़ियां चढ़ गई हूँ, कितनी ऊपर हूँ। तो ये मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला उस दिन कामयाबी रखेगा। ला यमस्सु मुस्सु, उनको छुएगी नहीं कोई भी बुराई, कोई तकलीफ नहीं छुएगी। सू के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हर किस्म के अजाब आ जाते हैं, उनको किसी किस्म के अजाब नहीं छुएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दर्द कोई तकलीफ उनको नहीं छुएगी, वो महफूज रहेंगे। कितने खुशकिस्मत लोग हैं ना तकवा वाले। और अल्लाह ताला ने फरमाया वला हुम यहज़नून, और ना ही उनको कोई हुजन होगा, तो उनको कोई गम नहीं होगा। गम इंसान को दुनिया में तो इससे निजात नहीं मिल सकती, दुनिया में तो ये गमों की अमाजगा है, यहाँ पे गम ही गम है। लेकिन मुत्तकी लोग वो हैं जिनको अल्लाह ताला गमों से निजात दे दे देगा उनको। तो आपको क्या समझ आई कि मुत्तकी को अल्लाह ताला निजात देगा दुनिया में भी, गुनाहों से जो बचना चाहता है अल्लाह ताला देखो उसको कैसे निकाल लेगा। तो हिम्मत ना हारो। और दूसरा मतलब आखरत में अल्लाह ताला निजात देगा जहन्नुम के अजाब से, मुत्तकी को बचा लेगा, और उनको कामयाब होने की वजह से उनको ये निजात मिलेगी कि दुनिया के इम्तिहान में वो कामयाब हो गए। तो वजह जरूर देखिएगा। देखें पहले मुजरिमों का जिक्र आया ना, जिनको जहन्नुम का अजाब दिया गया, और जिनको जिन्होंने बड़े एक्सक्यूजेस कहे लेकिन उनका कोई एक्सक्यूज नहीं कबूल हुआ, उनको अब उनसे ऑपोजिट लोगों का बताया गया जिन्होंने अपनी जिंदगी को सही किया, तो ऐसों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई गम नहीं आएगा। तो गफलतों से निकलने की एक हौसला अफजाई है। अब वहां पे यहाँ पे गम आ भी गए, वहां पे कोई गम नहीं छुएगा ऐसे इंसान को। बस अगर याद रखे गम होगा ना तो सिर्फ एक बात का होगा कि हाय हमने क्यों अपनी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा गुजारा जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये गम होगा, सिर्फ ये हसरत होगी, उसके अलावा नहीं कोई होगी। तो इमेजिन करें कि जिनकी सारी जिंदगी गफलतों में गुजर जाए और सारी जिंदगी अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर जाए, उनके गम का अंदाजा करें, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इस पे भी इंसान हसरत करेगा तो सारी जिंदगी जिसने छोड़े रखा उसका क्या हाल होगा। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शेई, अल्लाह ताला खालिक है हर चीज का, वहु आला कुल्ली शेई वकील, और वो हर चीज में कारसाज है। ये दावा कोई माबूदे बातिल नहीं कर सकता, और ना ही किसी के पैरोकार कर सकते हैं, किसी के पुजारी कर सकते हैं, कोई दुनिया में इस दावा करने की जुर्रत नहीं कर सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी कायनात को पैदा किया, या कोई कहे कि हमारे फलां देवता या देवी ने पैदा किया हुआ, नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं। ये सिर्फ एक मुसलमान सीना ठोंक के कह सकता है कि मेरा रब वो है जो सारे जहानों का खालिक है, और सारे जहान में क्या क्या चीज आ जाती है आप सोचें, इमेजिन करेंगे तो जहन आपका यानी इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है कि छोटे से छोटे जर्रे से लेकर इस जमीन के माइक्रोस्कोपिक जो चीजें हैं उनसे लेकर और बड़े से बड़ी चीज आसमान और उसके ऊपर अल्लाह ताला की कुर्सी और उसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श, सब का पैदा करने वाला अर्श जो है ना सबसे बड़ी मखलूक है, सबसे अजीम मखलूक अल्लाह ताला की, उसका भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है। नहीं बताया जा रहा है कि फिर इबादत का मुस्तहिक भी तो वही है। अल्लाह ताला ने जब तखलीक किया है तो फिर इबादत भी उसी की होनी चाहिए, और वो ही वकील है, काम उसके सपुर्द किए जाएं जिसके, तदबीर करने वाला कामों की, जो कामों को हैंडल करने वाला, कामों को चलाने वाला, निगरानी करने वाला उनकी हर चीज की। अब हर चीज में देख लेंगे कितने काम है, कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसके लिए अलग से अलग काम है। अला लहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह ही के लिए तख्लीक करना भी है और उसी के लिए हुक्म है। तो जब अमर उसका, खल्क उसके, और वकील भी वही है, तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए, किसी और की नहीं। और ये भी देखे ना कि जब कोई तख्लीक करने वाला है तो वो अपनी मखलूक को जाहिर है कभी भी तकलीफ तो नहीं देना चाहेगा। जिसने अपने हाथ से किसी चीज को पैदा किया हो वो तो नहीं चाहेगा ना कि वो अपनी उस मखलूक को अजियत दे, तो वो नहीं चाहता कि इंसान जहन्नुम में जा पड़े, जब भी उसने ये सारे इंतजामात इंसानों के लिए किए। लहू मकालीदु समावाती वल अर्द, उसी के पास है खजाने या चाबियां खजानों की, यानी हर चीज के खजाने उसके पास हैं, जो आसमानों में और जो जमीन में। सुबहान अल्लाह, यानी आप अंदाजा कीजिए आसमानों में क्या क्या चीजें हैं और जमीन में क्या क्या चीजें हैं, सबके खजाने अल्लाह के पास। नहीं इससे, और हम अपनी हद तक सोचे, उतना तो हमारा जहन नहीं जा सकता, मगर हमारी हद तक खुशी, गम, सुकून, इज्जत, जिल्लत, बादशाही, फकीरी, शिफा, बीमारी, सब चीजें, हर चीज उसके हाथ में, सब चीज की चाबियां, हिदायत उसके हाथ में, हकूमत उसके हाथ में, हत्ता कि हमारे जहन की चाबियां भी उसके पास ही हैं। तो जब हर चीज उसके हाथ में है तो वकील भी तो उसी को बनाना चाहिए ना, वो हर चीज का वकील है। लेकिन हम क्या उसको अपना वकील बनाते हैं कि हम उसके हवाले काम कर दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के काम में लग जाते हैं अल्लाह ताला उनके कामों को बनाने में लग जाता है। सुभान अल्लाह, जिसके काम अल्लाह बनाने में लग जाए उसके काम भी कभी अधूरे रह सकते हैं? आप अल्लाह के कामों में लग के देखें, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आपके काम कैसे संवारता है, कैसे बनाता है, कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। वो वकील है हर चीज का, और चाबियां हर चीज की उसके पास है। इंदहु मफातिहुल गैब, उसके पास गैब की चाबियां, खजाने सब उसके पास हैं। तो फिर झुकना किसके पास चाहिए? फिर क्या कोई और देने वाला है जिसके दर पे जाके माथा टेका जाए कि और यहां से तो पूरा नहीं हो सर हो रहा, यहां से हो जाए, शिफा इधर से नहीं मिल रही तो इधर से मिले, उनके आगे झुक रहे हैं कि सेहत हो जाए, अपना ईमान बेच रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला के हाथ में है सारी चाबियां। ये बात अक्सर जब इंसान डेस्परेट होता है ना तो ये बात भूल जाती है, ये अल्लाह हाकिम है और कंट्रोल उसके पास है, कि सारी दुनिया को भी मना लूंगी और इनको भी, इनके आगे भी माथे टेक लूंगी, चादरें चढ़ा दूंगी, ये जो अभी धागे तवीज सब कर लूंगी, लेकिन अगर मेरा रब ना चाहेगा तो कुछ हो नहीं सकता। ताकत उसके पास ही है, कुव्वत उसके पास ही है, मालिक वही है। वल्लदीन कफरू बी आयातिल्लाह, और वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का, कुफर करते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही खसारा पाने वाले हैं। यानी जो इसमें पता चल गया कि जो कुफर करे अल्लाह की आयात से, क्या सारी आयात से या एक आयत से कुफर करने वाला भी खसारा पाएगा? एक आयत का भी इनकार सारे कुरान का इनकार है, और वो खसारे में है जो ऐसा करे, वो खसारे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अफा गैर अल्लाह ही तामुरूनी, क्या गैर अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की तुम मुझे हुक्म देते हो आबुदू कि मैं इबादत करूं? क्या तुम मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह को छोड़ के गैर अल्लाह की इबादत करूं? अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, या जाहिल किसको कहा गया? ए जाहिलो, तुम मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह की इलावा किसी और की, मिन दूनिल्लाह ना, जैसे अफ गैर अल्लाह, जैसे मिन दूनिल्लाह हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और की मैं इबादत शुरू कर दूं। वो तो कह रहे थे ना कि हमारे बुतों की इबादत करें, आपके कुछ देर आप कर लें, कुछ हम आपके कर लेती हैं अल्लाह की। यहाँ पे देखिए गैर अल्लाह को मुकद्दम किया गया, वरना ये कुल अतामुरूनी ये पहले आना था, अन आबुदू गैर अल्लाह ये इस तरह आना था, मगर गैर अल्लाह को आगे किया गया इसलिए ताकि इस चीज को जोर दिया जाए, इस चीज के ऊपर एम्फोसाइज किया जाए कि गैर अल्लाह जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई जोर नहीं, जो ना खल्क के अंदर शामिल, ना वो वकील है, ना वो तदबीर करने वाला है, ना उसके हाथ में कोई चाबी है, उसकी तुम मुझे कहते हो कि इबादत करो? इसकी, जैसे हम कहते हैं ना, इसके आगे आप कहते हैं झुके, इसके, तो इस तरह से है, इसके ऊपर जोर दिया गया। कैसे, यानी अकल इसको कोई मान सकती है? जाहिल लोगों, जाहिल वो ही है ना जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम है, जिन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी, या जिसकी भी, जिसको भी उन्होंने समझा खुदाई में अल्लाह का शरीक बना लिया, उनकी इबादत कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन तुम क्या मुझे इनकी इबादत करने का हुक्म दे रहे हो? अच्छा, अब वो तो ठीक है, बुतों की इबादत करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा दे रहे थे या दावत दे रहे थे, लेकिन ये बताइए बुतों के अलावा गैर अल्लाह में तो हर चीज आ जाती है ना, अल्लाह के अलावा हर चीज गैर अल्लाह है, ठीक है, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो पैगंबर हैं, चाहे वो औलिया अल्लाह हैं, चाहे वो कोई हुकूमतें हैं, चाहे अपना नफ्स है, चाहे वो कोई घर वाले हैं, कोई भी हो सकते, गैर अल्लाह तो सभी चीजें हैं ना। तो क्या आपसे सवाल है, क्या आज भी गैर अल्लाह की पूजा करने की दावत दी जाती है? याद रखिए, इबादत को अगर आप सही समझते हैं तो इबादत का मतलब इताअत होता है, खुशू के साथ, खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ किसी की इताअत करना, मारे बांधे की नहीं, मोहब्बत के साथ और पूरी आजजी के साथ। तो आप बताइए कि इताअत करने को कहा जाता है? ऐसे मौके आते हैं जब कहा जाता है, मशवरे दिए जाते हैं कि जी आप गैरुल्ला की इताअत कर लें, नसन है आजकल तो ये सब चल रहा है, आप क्या ये बन गई हैं, आपने ये क्या हिजाब ले लिया, आप इसको छोड़ें? किसकी इताअत करने को कहा जा रहा है? अल्लाह की तो इताअत नहीं है, किसकी इताअत है? दीन पे चलने को नहीं कहा जा रहा, दीन वो है जो अल्लाह का हुक्म है, और पैगंबर की बात वो है जो अल्लाह का हुक्म है, इनके अलावा जिनकी भी बातें हैं वो सब गैर अल्लाह की बातें हैं। अब आप देखें, शादियों पे आप तैयार हो रहे हैं तो कितने मशवरे आते हैं ना, आज के दिन तो आप हिजाब उतार दें, आज के दिन तो इसकी जरूरत नहीं है, आज के दिन तो पूरा बन संवर के आप जो है ना सबके सामने आए, क्योंकि आज के दिन अल्लाह का हुक्म मानने की क्या जरूरत है? छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए ना कभी अल्लाह के हुक्म से, क्यों? उस दिन क्या सांस नहीं लेते? उस दिन क्या खाते नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा खाते पीते हैं? उस दिन क्या अल्लाह की पकड़ में नहीं है? उस दिन क्या अल्लाह निगरानी नहीं कर रहा, देख नहीं रहा? उस दिन क्या इन अज़ा से काम नहीं ले रहे, इस जिस्म से, आंखों से, कानों से, हाथ पैर, उस दिन क्या आफियत नहीं मिलेगी? अल्लाह ताला भी छुट्टी दे देना इंसान को अगर किसी दिन, कि जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है, आप कोई भी चीज तुम्हारी काम नहीं करेगी, तब इंसान क्या करे? आज छुट्टी है सब नेमतों से, आज वापस ले लेता हूं सब नेमते, तो इंसान क्या करे? हर दिन वो सोचता भी है, समझता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, चलता फिरता भी है, खाता पीता भी है, उसका दिल भी धड़कता है, मेदा भी काम करता है, सब चीजें वो अल्लाह की दीवी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी इताअत से छुट्टी ले लेता है। और ऐसे बहुत से मौके आते, ऐसे बहुत से मौके आते हैं जबकि कोई घर वाले कह रहे होते हैं कि अब तो बस कर दें, अब ये सब चीजें, ये सूद और ये और वो, आपने खाम खा चीजें हराम बनाई हुई, आजकल तो यही चल रहा है और ऐसा है, और आप बहुत रिजिड हो गई हैं। बहुत से मौके आते हैं जिसके अंदर घर वालों को इंसान उनकी इताअत करना शुरू कर देता है, उनको ही अपना खुदा बना लेता है। कई दफा लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं, हस्बैंड कभी उनकी मानना शुरू कर देते हैं अल्लाह की बात छोड़ के, सिवाय अल्लाह, जहां पे अल्लाह की बात है ना, वो तो अल्लाह की बात ही है, फिर वो कोई भी कह रहा है वो बात अल्लाह की है, वो उसकी नहीं है। लेकिन जहां पे अल्लाह की बात ना हो, अल्लाह सुबहाना तआला की बात तो एक तरफ रख दी जाए, उनकी बातों को मुकद्दम कर लिया जाए, तो किसकी इबादत कर रहे हैं फिर? कभी रस्मों रिवाज की, कभी लोगों की, कभी माशरे की, कभी खानदानों की, कभी बच्चों की, कितनों की हमें इतात करते हैं और खुशी खुशी कर रहे होते हैं। तो उस वक्त ये आयत सोच लेनी चाहिए, आफा गैर अल्लाह तामुरूनी आबुदू, ये कहनी चाहिए कि क्या अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के सिवा तुम मुझको हुक्म देते हो कि मैं इबादत करूं, सिवाय अल्लाह के किसी और की मतलब इबादत करूं, तुम्हारी मान लो अल्लाह की छोड़ दू, तुम बड़े हो या अल्लाह? अल्लाह के मकाम पे किसी और को बिठा देना, उसके कहने पे चीजों को हलाल या हराम करना, उसकी ऐसी इताअत करना कि जो हराम काम है उनको भी सोचना कि कोई बात नहीं है इनका, क्योंकि इसने कह दिया तो ठीक है, अब इसकी कैसे ना मानूं, वो कोई भी है, वो चाहे कोई हुकूमत ही क्यों ना हो, कोई मुल्क ऐसी पाबंदी लगा देता है कि आप मसलन है कि अब से सब औरतें जो हैं, जैसे कई मुल्कों में उन्होंने लगा दी है यूरोप में, या आप नकाब नहीं ले सकते, या आप हिजाब नहीं लग सकते, उनके यहाँ उनकी मानेंगे? कई जगह पे उन्होंने कह दिया कि गे मैरिजेस ठीक है, तो क्या उनकी मान लेंगे? हाँ भाई, इन्होंने कह दिया तो ठीक ही होंगी। तो इस यहाँ पे ये आयत का मतलब ये है, ये अल्लाह की छोड़ के तुम्हारी मानना शुरू कर दूं, ये मतलब है। जो भी अल्लाह की बात से हट के बात करे उसके लिए ये जवाब है, क्या अल्लाह की छोड़ के तुम्हारी मानो, फिर देखे आगे से वो क्या ये जुर्रत कर सकेगा कि कहे हाँ अल्लाह की छोड़ के बेग मान लो। लेकिन हम कहते ही नहीं है ना, हम पहले ही रेडी होते हैं अल्लाह की छोड़ने को, पहले ही रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, क्योंकि अपना मन जो है ना वो भी उस बात की तरफ ही कायल होता है, इसलिए बहाने होते हैं कि भाई क्या करें। ए जाहिलो, ये जाहिल ही है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, जो ये कह रहा हो कि फलां की मान लो अल्लाह की छोड़ के, या मेरी मान लो अल्लाह की छोड़ के, अब वो आपके नजदीक चाहे बहुत बड़ा पीएचडी है, कोई डॉक्टर, कोई ऐसा इंसान है जो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ा साइंसदान है, लेकिन वो जाहिल है। वलकद ऊहिया इलैका, और आगे ही बता दिया गया, इस ये शिर्क है ना, आगे ही बता दिया गया कि जो शिर्क करेगा फिर क्या है, वलकद ऊहिया इलैका, और अलबत्त तहकीक वही किया गया आपकी तरफ, आपकी तरफ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वह इल्लल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और आपसे पहले लोगों की तरफ भी ये बात वही की गई। क्या बात है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही की गई, आपसे पहले लोगों को भी वही की गई, क्या बात हो सकती है वो, ये कि लइन अशरकता, अगर आपने शिर्क किया, अलबत्ता अगर आपने शिर्क किया अब देखें, पहले भी ताकीद आई ला, फिर ताकीद आई ला यह बतन, अलबत्ता जरूर जाया हो जाएगा अमलों का, आपका अमल। वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। अब यहाँ पे इन शर्तियां है, इसका कोई इम्कान नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी शिर्क करें। लेकिन वो बात होती है ना कि कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है, लेकिन सुनाया सबको जा रहा है, चाहे कोई मुसलमान है चाहे काफिर है मुशरिक है, किसी ने भी शिर्क किया, जो भी शिर्क करता है, चाहे मुसलमान होके शिर्क करना शुरू कर देता है, वो बड़ा अपने आप को मुसलमान कहता है, नाम तो उसने मोहम्मद रखा हुआ, लेकिन वो शिर्क शुरू कर दिया उसने, छोटा या बड़ा किसी तरह का भी शिर्क। उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया उसके सारे अमल महबूत हो गए। हबत अमल क्या है, ये टर्म कुरान करीम में बहुत जगह आई है, तो एक दफा आप इसको समझ लें। हब्त कहते हैं किसी जानवर का जहरीली घास खा के फूल जाना, जब वो इतना फूल जाता है, वो लगता ऐसे है कि जैसे ये बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन वो हलाक हो जाता है उसके बाद, मर जाता है, क्योंकि जहरीली घास है। तो जो उसका ब्लोटेड स्टमक है, देख के क्या लगता है कि ये सेहतमंद है। इसी तरह ये आमाल ऐसे हैं कि ये हलाकत है, इनमें हलाकत छुपी हुई है। देखने को बड़े बड़े अमल लगते हैं, बहुत जबरदस्त लगते हैं, इसमें क्या हर्ज है, ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो सब हलाकत है, जाया हो जाने वाले। समझ आई बात? तो ये दिखने में कुछ, लेकिन असलियत उसकी क्या है, हलाकत। इसी तरह ये अमल देखने में कुछ, लेकिन असलियत इनकी क्या है, जाया हो जाने वाले। तो इसलिए इसका तर्जुमा किया जाता है, जाया हो जाएगा अमल आपका, अमलों का आपका अमल जाया हो जाएगा। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि ऐसा नहीं करना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कह दिया गया ना, तो उसके बाद सबको समझा दिया गया कि देख लो, अगर नबी जो अल्लाह का इतना प्यारा और चुना हुआ बंदा है, अगर वो भी शिर्क में मुलव्वस हो जाता है, तो उसके भी सारे अमल जाया हो जाएंगे, वो भी बच नहीं सकेगा, उसकी कोई नेकी नहीं काम आएगी उसको, वो कोई हज कोई उम्रे कोई कुछ नहीं काम आएगा। तो फिर तुम लोग क्या चीज हो, तुम लोग सोचते हो कि ये नेकियां करके किसी ने अस्पताल बना दिया, किसी ने यतीम की किफालत शुरू कर दी, कोई बड़े अच्छे और ऐसे जबरदस्त काम कर रहा है इंसानियत की खिदमत के, और वो सोचे कि मैं तो बच सकता हूँ। नहीं, तुम कैसे बचोगे, नबी नहीं बच सकता, अगर तो तुम कैसे बचोगे। इसी तरह सूरह नाम में अल्लाह ताला ने 18 अंबिया का जिक्र फरमा के उनके नाम लेके फरमाया कि अगर वो भी शिर्क करें तो उनके सब कुछ जाया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नाम में ही है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तो ये डरता हूँ कि मैं अगर अपने रब की नाफरमानी कर लूँ तो मुझे भी बड़े दिन के अजाब से डर है, मुझे ये डर है कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो फिर और किसी का क्या रह जाता है। कुल इन्नी उमिर तो अनकुना अव्वल अमन असलम वला तकुनन मिनल मुशरिकीन, कि ए नबी आप भी कह दें कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूं और मैं मुशरिकों में से ना हूं। अगर रसूल के लिए भी ये है और रसूल भी डरते हैं बड़े दिन के अजाब से, तो कौन है जो हम में से इससे बेखौफ हो जाए कि कुछ नहीं होता, अगर हमने शिर्क कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, या हम, अल्लाह माफ करे हमें, हम उनके लिए वकालत करना शुरू कर दें जिनको हम दुनिया में देखते हैं कि वो बड़े बड़े चैरिटी वर्क्स कर रहे हैं, उनके लिए वकालत करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, जी वो क्यों जाएगा जहन्नम के अंदर। एक दफा किसी ने इस चीज के ऊपर बहस शुरू कर दी कि कैसे हो सकता है, मुसलमानों के तो काम इतने खराब, वो तो इतने बुरे, और ये लोग देखो तो अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए लगा दी, फलां है, कि फिर क्या हो गया अगर उन्होंने शिर्क कर लिया तो, अब ये शिर्क के ऊपर क्या इतना बड़ा उनको वो हो जाएगा, तो अपना पता नहीं है कि मैंने भी बचना है कि नहीं कयामत में, और इसकी जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों की वकालत के लिए हम ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे हम तो पार हुए हुए हैं, हमें तो जाहिर है हमें तो जन्नत का टिकट मिला ही हुआ है, तो अब हम दूसरों के लिए कहना शुरू कर दें कि हम
हमें जो लगता है कि इसको जन्नत में जाना चाहिए तो उसको जाना चाहिए, और ये सारे तो जहन्नमी है, इनको जहन्नम में मरना चाहिए। तो ये हमारे फैसले से नहीं है, अल्लाह ताला ने शिर्क को ऐसा अमल बता दिया कि जो नाकाबिले माफी है, कभी माफी नहीं हो सकती उसकी, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। हाँ, दुनिया में किसी को रियलाइज हो जाए और वो माफी मांग ले तो 100 दफा अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, लेकिन आखरत में जाके ये अमल साथ हुआ तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा नेकियों का भी। इसी वजह से इंसान को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि किसी चीज में शिर्क का शाइबा भी अगर है ना, शुबा भी, अगर आपको शक भी है, वो काम ना किया जाए। गैरुल्लाह की इबादत शिर्क है, गैरुल्लाह की मानना भी शिर्क है, ऐसे अमाल से बचा जाए। आप देखिए ना, अगर एक मसलन है गंदगी का, गंदा पानी है, नापाक पानी है, उसके अंदर आप 10 बाल्टियां भी साफ पानी की डाल देंगे तो वो कबूल कर लेगा, कोई फर्क नहीं है उसको पड़ता। लेकिन अगर आप एक जग में भी एक बूंद सिर्फ पेशाब की डाल दें तो वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, नापाक हो गया। तो पता चलता है कि हक तब तक हक है जब बातिल की मिलावट ना हो। हक पल्यूट हो जाता है अगर बातिल का एक कतला कतरा भी आ जाए, लेकिन बातिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास हक आ भी गया, उसने तो इम्प्योर ही रहना है ना, वो तो नापाक है, नापाक ही रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं बातिल कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार हो जाता है, लेकिन हक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इस्लाम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कुफर आप देख लेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, तुम ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आज देख लेना आप, उन्होंने कहा भी गे मैरिज भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, वो सब, उनको क्या फर्क पड़ता है, कुफर है उसके अंदर, सब चीज ही ठीक है। लेकिन जो हक है ना वो नहीं झुकता, वो अपनी जगह, उसका स्टांस है और वो वैसे ही रहेगा, उसके अंदर आप मिलावट नहीं कर, अगर मिलावट कर दी वो हक खत्म हो जाएगा, वो भी बातिल बन जाएगा। तो हक टॉलरेट नहीं कर सकता इतने से भी बातिल को, समझ आई बात, आप देख लेना। इसीलिए मेरे पास कई रिक्वेस्ट आती रहती हैं मुशरिक लोगों की ना, कि आप पता नहीं वो देखते होंगे कि भाई ये कोई दीन का काम कर रहे हैं इसलिए शायद कहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि भाई आप ये दुआ कर दें ये हमारे लिए, फलाने के लिए, हमारे तो वो फलां बीमार है उसके लिए दुआ कर। अब मैं हमेशा ये एक बात सोचती हूँ कि देखो ये फर्क है हक और बातिल में, कि वो बातिल पे है ना तो अपने बातिल की खुद गवाही दे रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर दें, आपका रमजान आया इसमें हमारे लिए दुआ कर दें, आप मस्जिद जाएं तो हमारे लिए दुआ कर, लेकिन हम कभी भी नहीं ये कहेंगे कि आप मंदिर जा रहे हैं ना या चर्च जा रहे हैं तो हमारे लिए दुआ करना। इसी क्या ये बड़ा सबूत नहीं है? वो हमें कहते हैं, एक ने नहीं, बहुत सारे लोग मुशरिकों की बात कर रहे हैं, हिंदू भी इसमें, क्रिश्चियन भी इसमें शामिल है, कि वो कह देते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे लिए दुआ करें, क्यों, हम पता है कि ये गलत है, ये बातिल है। उनको अपने इसका मतलब है कि जो जिस अकीदे पे वो हैं उनको उसका भी यकीन नहीं है, और अगर वो ये समझते हैं कि वो उनका अकीदा बिल्कुल सही है तो उनको तो कभी भी किसी और को पूछना ही नहीं चाहिए। हम में जो कहते हैं, जो हक पे है ना, वो कहता है कि ये बातिल है, ये गलत है, और हम जरा सी भी आमेजिश नहीं हम हक में अब कर सकते। तो एक मिसाल है कि देखो हक जो है कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी झुकेगा नहीं, लेकिन बातिल आप देखो हर जगह कॉम्प्रोमाइजेस है, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज ही है, कोई बात नहीं आप दुआ कर लें इससे क्या फर्क पड़ता है, हम कभी नहीं कह सकते वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। और ये इसको लंबा नहीं करना वला तकूनन्ना, अगर आपने वला कर दिया तो फिर नहीं हो जाएगा, वो नहीं होंगे खसारे में, बिल्कुल उल्टा मतलब, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अलबत्ता जरूर वो हो जाए, आप हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। अब अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहकर ये बात हम सबको दिखा दी, आईना दिखा दिया। अब अपने अपने अकीदे फिक्स कर लो, वरना कोई गुंजाइश नहीं है। ये ना लेकर आ जाना इस तरह के अकीदे की जिंदगी अंदर शिर्क की भी मिलावट हो, मुसलमान भी अपने आप को कहते रहो और साथ साथ शिर्क भी जारी रखो, तो फिर ना सब कुछ कहना, इसलिए कि अल्लाह ताला तो अपने नबी से भी शिर्क को नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर और कोई किसी की क्या हैसियत है। बलिल्लाहु फाबुद, बस अल्लाह ही की आप इबादत कीजिए, वकुम मिनश्शाकिरीन, एक अल्लाह की इबादत करें और शुक्र गुजारों में से हो जाए। जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है ना, जब अल्लाह को पहचानता है, उसके आगे झुकता है, उसकी इबादत में लगता है, तो फिर शुक्र खुद ब खुद आ जाता है। वाकई जिसने अल्लाह को पहचान लिया, वो तो कभी उसके आगे शुक्र गुजारी के सिवा कुछ कह ही नहीं सकता, ना शुक्री उसकी जिंदगी से निकल जाती। वो अल्लाह जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैं जो भी कुछ, एक आंख के झपकने से लेकर एक सांस के लेने से लेकर मेरे जितने काम है, उनमें मैं उस रब का मोहताज हूं और वो ही कर रहा है, तो तब इंसान शुक्रगुजारी में खुद ही झुक जाता है। तो एक अल्लाह की इबादत, बलिल्लाहु फाबुद। अच्छा, अब ये देखें कि मुशरिकीन ने मक्का या इवन आज के भी बाज मुशरिक जो हैं, अक्सर वो एक एंटिटी को मानते हैं कि कोई एक बड़ी एंटिटी है, और उस जमाने में तो अल्लाह का नाम लेके वो मानते थे कि एक अल्लाह है जो जो सब चीजों का मुख्तार कुल है, जो सब है वो है, और ये साथ उसके शरीक है, इनको भी उसने कुछ इख्तियारात दिए में कि जो भी ये करते रहे, ये था उनका शिर्क उस वक्त का। तो यहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह को मनवाओ, ये भी हमारी तबलीग नहीं है कि एक अल्लाह को मान लो, बल्कि तबलीग का हमारा बेसिक नुक्ता ये है कि सब को छोड़ के एक अल्लाह की इबादत, याद रखें ये। तो अल्लाह को मनवाना अगर सिर्फ मकसद होता ना, तो फिर तो बहुत सारे मुशरिक कहेंगे ही कि हाँ भाई वो हाँ एक ऊपर है, और आप भी मुतमईन होके बैठ जाए, हाँ जी ये तो मानते ही है ना, एक तो बड़ा है ही। नहीं, सब की नफी, पहले ला इलाहा है फिर इल्लल्लाह है, सब की नफी करो पहले, सब का इनकार करने बाद सिर्फ वो एक अल्लाह। तो मानने का मतलब ये नहीं कि कोई मान गया, उसने कहा हाँ जी मैं भी मानता हूं एक गॉड है, और आपने अपने हाथ झाड़ लिए कि मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, फिर मानो जैसा वो है, जैसे उसका हक है, वैसा मानना जरूरी है निजात के लिए, ठीक है। वो वैसा नहीं मानते जैसा अल्लाह ताला है, इसीलिए आप आगे आप देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कदरुल्लाह का कदर ही, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसे कदर करनी चाहिए थी, उनको पता ही नहीं है अल्लाह कैसा है। अगर अल्लाह को जानते होते तो इस तरह के काम कभी भी ना करते, अगर अल्लाह को जानते होते तो शिर्क ना करते, इन बूढ़े माबूदों को उठा के अल्लाह के बराबर ना ठहरा देते। याद रखें सूरह जुमर जो है ना, वो तौहीद फिल इबादत में बहुत अजीम सूरत है। इबादत में जो लोग शिर्क करते हैं ना, उनको एक दफा इस सूरत को पढ़ा दिया जाए, ये इस उस जात की अजमत को देखो, वो अल्लाह क्या है तुम सोच सकते हो, तुम किसके साथ शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह की ये ना कदरी है उसके साथ शरीक ठहराना। तो अब आप सोचिए, जब अल्लाह ताला की अजमत बयान की गई, जब अल्लाह ताला की कदर बयान की गई, तो क्या हम अल्लाह की कदर जानते हैं? उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, ये गिला है, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करनी चाहिए। क्या हम जानते हैं अल्लाह की कदर? हम कैसे जानेंगे? अगर अल्लाह की कदर हम जानते होते ना, तो हमारे ये रवैये ना होते अल्लाह ताला के अहकामात के साथ, उसकी किताब के साथ। हम ये मजाक ना करते कि हमारे पास टाइम नहीं है अल्लाह की किताब को देने के लिए, अल्लाह की बात सुनने से हमारे दिल तंग ना होते, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में हमें कोई बेचैनी और तरद्दुद ना होता, अल्लाह के अहकामात हमारे लिए सारा आंखों पे होते। अगर हम वाकई अल्लाह की कदर पहचानते होते कि वो है कौन, उसकी अजमत का एहसास होता, उसकी कुछ ना कुछ पहचान होती, जिसने थोड़ी भी पहचान कर ली ना, वो अपना सर ना उठा सकेगा।
तो हमारी नाफरमानियों की वजह ही है कि हम अल्लाह को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमने उसकी वो कदर नहीं जानी, वो उसका मकाम हमने नहीं पहचाना जो उसका मकाम है, और ना ही उसको वो मकाम दिया जा रहा है, पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो फिर क्या देंगे? और ये पहचान कैसे आएगी? उसके कलाम से आती है ये पहचान, उसके अस्माओ सिफात को जानने से आती है उसकी पहचान। तो अल्लाह ताला की अस्माओ सिफात को जितना आप सीखने की कोशिश करें, पढ़ें, उन उनमें गौर करें, वो फिर अल्लाह ताला की अजमत को जाने। और इसी तरह कुराने करीम के साथ जितना आप वक्त लगाएंगे उतना ही अल्लाह को पहचानेंगे। तो उन्होंने कभी भी नहीं ये जानने की कोशिश की कि अल्लाह की कदर क्या है। हाय, कदर की हमने तो किन चीजों की? इन मिट्टी गारे के घरों की कदर बहुत करते हैं, अपनी गाड़ियों की बड़ी कदर करते हैं, अपने औलाद की बड़ी कदर करते हैं, और चीजों की बड़ी कदर करते हैं, पैसे की बड़ी कदर करते हैं, लेकिन एक कदर ना जानी तो अल्लाह ही की कदर ना जानी जो सब कुछ देने वाला है। कितनी बदनसीबी है ना ये। कितने ही लोग हैं जो कलमाए हक भी पढ़ते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो अल्लाह कौन है जिसके नाम का वो कलमा पढ़ते हैं, वो अल्लाह कौन है जिसके नाम की वो नमाजें पढ़ते हैं। बिल्कुल पता नहीं, कोरे के कोरे हैं बिल्कुल। कितनी बदनसीबी की बात है। तो ये अल्लाह ताला का गिला कुराने पाक में और जगहों पे भी आता है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अफसोस है इंसानों के ऊपर कि इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी। हालांकि इस कायनात के अंदर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जिस जात के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और जिसकी कदर सबसे ज्यादा, जिसकी कदरों मंजिल और अजमत हमारे दिल में होनी चाहिए, वो अल्लाह की जात है। क्योंकि बाकी हर चीज फना हो जाने वाली, बाकी हर चीज को जवाल आ जाने वाला, बाकी हर चीज खत्म हो जाने वाली है, हर चीज छोड़ जाने वाली है, लेकिन एक अल्लाह की जात है जो हमेशा से है। उसकी जो असमाय उसना है ना, आप उनके अंदर देखेंगे तो आपका दिल अल्लाह की अजमत से भरता चला जाए। वो हई और कयूम या जात, वो इतनी आला जात, वो ऐसी जात की जो सुनता है, जो देखता है, जो बाखबर है, उसका इल्म कैसा है, उसकी हिकमतें कैसी हैं, उसकी खबर रखना कैसा है, उसकी तखलीक कैसी है, वो कैसा खालिक है, वो कैसा मालिक है, वो कैसा मोहब्बत करने वाला है, वो कैसी अजमत वाली जात है। कितनी हम चीजें देखते हैं अस्माए हुस्ना में सीखते हैं, वो कैसा हिफाजत करने वाला है, वो जुल जलाली वल इकराम जात है। तो हम जब जितना जितना उनके डेप्थ में जाते जाते हैं ना, फिर उस उतना ही इंसान वाकई अल्लाह के आगे झुकता चला जाता है। फिर सही इबादत का फिर मजा आता है कि इंसान का दिल इबादत के अंदर लगने लगता है कि वो जात कौन है जिसके आगे मैं झुक रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो अल्लाह की इन्होंने कदर ही नहीं पहचानी। अल्लाह तो वो है, वल अर्दु जमीअन कब्दतुहू यौमल कियामा, कि जमीन सारी की सारी, ये कुल तुम्हारी जमीन जो है ना उसकी मुट्ठी में होगी कयामत के दिन। वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी, और आसमान जो है लिपटे हुए होंगे उसके दाहिने हाथ में। अल्लाह को तुम क्या समझते हो इन्हें मट्टी के और पत्थरों के बनाए हुए बुतों के सामने अल्लाह को लाके खड़ा कर देते हो? इनको अल्लाह के मुकाबले में करते हो? अल्लाह ताला की जात का अंदाजा तो करो, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुमने तो कदर ही नहीं जानी अल्लाह की। वो तुम्हें उसकी कुव्वत का अंदाजा है कोई? वो तो वो है जिसकी मुट्ठी में होगी ये जमीन। आप अंदाजा कीजिए, ये जमीन जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, जो हमारे नजदीक बड़ी, यानी यहां से वहां तक जाना भी हो तो जहाजों के अंदर कितने कितने घंटों का सफर करके हम पहुंचते हैं। नॉर्थ से साउथ में जाना हो, ईस्ट से वेस्ट में जाना हो, हमें कितने घंटे लग जाते हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी ये है, हमारे लिए तो पता नहीं पूरी कुल दुनिया ही है। ये पूरी जमीन उसके कब्जे के अंदर होगी कयामत के दिन, यानी उसकी मुट्ठी में होगी। हम अपनी मुट्ठी में सोचें, आप सोचें आप अपनी मुट्ठी में क्या रख सकते हैं। एक फुटबॉल तक नहीं आता। घर और गाड़ियां तो दूर की बात है, वो तो हमारी मुट्ठी में बिल्कुल ही नहीं आ सकती, लेकिन एक छोटी सी चीज ही आती है, एक दाना आ जाएगा या एक छोटा सा बंटा आ जाएगा या क्या, छोटी छोटी चीज ही आ सकती है जो आपकी मुट्ठी में, आपके कब्जे में, बिल्कुल आप मुट्ठी बंद करें तो वो आ जाए। इमेजिन करें कि अल्लाह ताला की मुट्ठी के अंदर पूरी जमीन का आ जाना, तो ये जमीन क्या हैसियत रखती है उसके सामने, बल्कि ये तो कायनात के सामने भी कुछ हैसियत नहीं रखती, सातों जमीनें भी कुछ हैसियत नहीं रखती अल्लाह ताला के आगे। कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी में यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जमीन को कब्ज कर लेगा और आसमान को अपनी दाहिनी मुट्ठी में ले लेगा, फिर फरमाएगा मैं हूं अल वाहिद अल कहार, बादशाह कहाँ है जमीन के बादशाह, ऐन अल जब्बारून ऐन अल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो बादशाह। और मुस्लिम की हदीस में कि जमीनें उसकी एक उंगली पे होंगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में होंगे, फिर वो फरमाएगा मैं ही बादशाह हूँ। मुसनद अहमद की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पे इस आयत की तिलावत फरमा रहे थे, तो आप अपना हाथ हिलाते जाते थे, आगे पीछे ला रहे थे और फरमाते थे अल्लाह ताला अपनी बुजुर्गी आप बयान फरमाएगा कि मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बाइज्जत हूँ, मैं करीम हूँ। आपकी इस बयान के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हिल रहे थे कि सहाबा कहते हैं हमें डर लगने लगा कहीं आप मिंबर समेत जमीन पे ना आ जाए, गिर ना जाए। यानी अल्लाह की अजमत का एहसास, अल्लाह ताला की किबरियाई का एहसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतना ज्यादा था। और ये अल्लाह के नबी हैं जो इतना ज्यादा अल्लाह ताला की अजमत का एहसास अपने दिल में लिए। हमारे दिल में कितना होना चाहिए, फिर हमें कैसे हौसला हो जाए नाफरमानी करने का, गुनाह करने का, उसको नाराज करने का, और फिर भी आराम से घूम रहे होते। अल्लाह कौन है, कुछ समझो तो सही। एक्चुअली आज के वक्त के अंदर अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ करे हमें, हमने अल्लाह ताला को अपना पियर समझ लिया, अपना साथ वाला कोई। इसीलिए तो कितने आराम से बोल देते अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, वो तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, फिर फलां को अल्लाह ने भूखा क्यों रखा, हमारा घर ही देख लिया था, इस तरह की घटिया बातें। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दे दिया, ये क्या बात हुई इसके अंदर, सरकशी जिसके अंदर। तुम क्या चीज हो अल्लाह के आगे, तुम क्या हो, क्या सोचो तो सही, तुम्हारी हैसियत क्या है। ये थूक फेंक के अपनी हथेली के ऊपर और फिर इस थूक को देखे और फिर सोचें ये हूं मैं, और कहां अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या मिजाल बन सकती है इंसान की जुबान की कि वो कुछ बोल सके। और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें मुंह से इतने आराम से निकाल दें जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे कि हम किसी ऐसे ही आम आदमी की किसी की बात कर रहे हैं। ओहो सोचो तो सही, को खुदा का खौफ करो, किसकी बात कर रहे हो। कभी हंसते भी कह देते अल्लाह भी सोचता होगा ऐसे, अल्लाह भी कहता होगा ऐसे। अल्लाह ताला माफ करे हमें कि हम इतने आराम से ऐसे बात कर लेते, इस तरह तो हम अपने बुजुर्गों की भी नहीं करते, उनको भी इज्जत दे देते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला की तो इज्जत हमारे दिल में क्या कुछ भी नहीं है कि इस तरह बातें हम बनाने लग पड़े। अल्लाह क्या सोचता है या क्या कहता है हम नहीं जानते, वो भी कहता होगा, वो भी ये कैसे जुमले हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ये हम कैसे बोल सकते हैं, हम क्या चीज है। ये सब चीजें बताती हैं कि हमारे दिल में कोई कदर नहीं है अल्लाह की, जब ये बातें हमारे जुबान से निकली कैसे, जुबान में आने से पहले हमारी जुबान शल क्यों ना हो गई, हम किसकी बात करने जा रहे हैं। कोई अपने माँ बाप को भी इज्जत दे देता है और अल्लाह ताला के बारे में ऐसे अपनी जुबानें खोल देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो हम जान ही ना सके। उसका हिल्म है, देखिए उसके हिल्म के ऊपर इंसान गौर कर ले, अल्लाह अकबर। वाकई उसका हिल्म है कि वो हमारे जैसे लोगों को मोहलत दिए रखता है, वरना तबाह बर्बाद कर दे इस दुनिया को तो उसका कुछ नहीं जाता। जब नहीं भी थी ये दुनिया तब भी वो ही मालिक था कायनात का, तब भी उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं थी। जब हमारे जैसे नाहंजार हैं तब भी उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं है, कोई कुछ भी बोलता जाए या शिर्क करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी नाफरमानियां देख के, हमें तो अपनी नाफरमानी पे इतना गुस्सा आता है कि हम बच्चों को दो लगा देते हैं कि क्या से तूने मेरे आगे जुबान खोली है। और खुद दिन रात अल्लाह के आगे जुबानें खोलते हैं और नाफरमानियां करते हैं, और फिर कोई जरा सा भी मलाल नहीं है इस पे, दुख नहीं है, ये क्या हम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस तरह से अल्लाह ताला की हैबत को बयान फरमाया। एक रिवायत में इब्ने उमर ने इसकी पूरी कैफियत दिखा दी कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हिकायत किया कि अल्लाह तबारक व ताला आसमान और जमीनों को अपने हाथ में ले लेगा और फरमाएगा मैं बादशाह हूँ, अपनी उंगलियों को कभी खोलेगा कभी बंद करेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हिल रहे थे, इतना पे लर्जा तारी था, इतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा थे, यहाँ तक कि मिंबर हिलने लगा, कहते मुझे डर लग गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे ना गिर पड़े। अल्लाह अकबर, या रब, वाकई हम तेरी कदर ना पहचान सकती हैं, ना पहचानी है हमने। सुबहान अल्लाह, पाक है वो अल्लाह पाक है, वताला अम्मा युशरिकून, और वो बुलंद है इससे जो वो शिर्क करते हैं। वो कैसे है? ये इतने इतने छोटे चीजों को तुम अल्लाह के आप मुकाबले में लेकर आते हैं। सोचो सच, सही सही हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खड़े होके सहाबा कराम को बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ना सोता है ना उसको नींद आती है, उसकी जात इसके लायक ही नहीं, वो तराजू का मुहाफिज है, जिसके लिए चाहे झुका दे जिसके लिए चाहे ना झुका, दिन के अमाल रात से पहले और रात के अमाल दिन से पहले उसकी तरफ ले जाए जाते, और उसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं, अगर वो हट जाए तो उसके चेहरे की तजलियां उन तमाम चीजों को जला दे जिन तक उसकी निगाह पहुंचे। अल्लाह अकबर, जिस तक उसकी निगाह पहुंचे, क्या मतलब? अल्लाह की निगाह तो गैर महदूद है, उसका तो कोई हद ही नहीं है, यानी हर चीज कायनात की जल जाए। अल्लाह अकबर, और कुर्सी अल्लाह ताला के अर्श के नीचे है, और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सातों जमीनों और आसमानों को अगर फैला दिया जाए और सबको मिला के एक फ्लैट एक चीज बना दी जाए, तो भी ये सातों जमीन और आसमान, ये हमारी जमीन क्या चीज है, सातों जमीन और आसमान, आसमान में भी मतलब आसमान का ये नहीं मतलब ये सिर्फ आसमान, आसमान के अंदर जितने सितारे सैयारे गैलेक्सीज, ये तो पहले आसमान की चीजें हैं, अगले आसमानों तो हम पहुंच ही नहीं सकते, ये आसमान दुनिया की चीजें हैं, जितनी हमारे सामने आती हैं। आज इंसान ये हैरान हो जाता है कि क्या क्या, कितनी कितनी दूर सितारे सैयारे, कितनी और कहकशाएं, कितनी और दुनियाएं हैं, तो ये सारों को मिला के सातों आसमानों को मिला लिया जाए और उनको ऐसे फ्लैट कर दिया, तो भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बस रिंग है जो चटियल मैदान में पड़ा हुआ है, और कुर्सी जो है अल्लाह के अर्श के मुकाबले में भी ऐसे है जैसे एक रिंग चटियल मैदान में पड़ा हो। मैदान है, सहरा है, पूरा डेजर्ट है, उसके अंदर एक छल्ला सा पड़ा हुआ, बस इतना सा आसमान और जितने आसमान और जमीनें सब कुछ है ये फ्लैट कर दिए, ये कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी है, और अर्श भी अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह की एक मखलूक है, सोचे कि वो रब कितना अजीम होगा। इन चीजों से सिर्फ हम उसको पहचानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, वरना अल्लाह ताला की अजमत तक को तो हम पहुंच ही नहीं सकते। और यहां से हमें एक और बात पता चली कि अल्लाह की मुट्ठी भी है और उसका दायां हाथ है। अब वो कैसा है, उसकी कैफियत क्या है, ये हम नहीं जानते, और ना ही इसको सोचने की ना इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, बस हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, इससे आगे नहीं कुछ, और ना ही हम इसको किसी चीज के साथ मुशाबहत देते कि उसका हाथ उसकी तरह का
किसी की तरह कभी नहीं, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कुछ है ही नहीं, कोई भी नहीं है। बस हमें ये पता उसकी मुट्ठी है जैसी उसकी शान के लायक है। इसलिए मैं आपको ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बिना पे कई फिरके बने जिन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह की मुट्ठी का इनकार। उन्होंने कहा अगर हम मुट्ठी का ईमान रखेंगे तो फिर मुट्ठी तो फिर इंसानों की भी मुट्ठी है, फिर अल्लाह की भी मुट्ठी है, तो वो तो फिर मुशाबहत हो जाएगी। तो फिर नहीं, अल्लाह की मुट्ठी है क्योंकि उसने फरमा दिया, अल्लाह की पिंडली है क्योंकि उसने कुरान में फरमा दिया, अल्लाह का हाथ है क्योंकि उसने कुरान में फरमा दिया, और हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं और ये कहते हैं हमें इसकी कैफियत नहीं मालूम, जैसे अल्लाह तेरी शान है उस तरह ही है। बस ये है सही ईमान। और इनकार कर देना इन चीजों का, और नहीं, मुट्ठी से मतलब तो शायद कुदरत होगी तो उसका माना कुदरत कर लेना, चेहरे से मुराद तो चेहरा है ही नहीं तो इसका मतलब अल्लाह की रजा होगी तो फिर रजा कर देना, अच्छा हाथ से मुराद भी अल्लाह ताला की कोई कुदरत या कुछ इस तरह होगी तो कुव्वत होगी, तो हाथ का मतलब कुव्वत होता है तो इसका कुव्वत, ये सब गलत है, इस तरह के तर्जुमे नहीं करने। ठीक है, जो है उसी तरह आप कहें और बस उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दे कि हम नहीं जानते। वनुफिखा फिस सूर, और सूर में फूंक दिया जाएगा, फसाए कमन फिस समावाती व मन फिल अर्द, तो बेहोश हो जाएंगे जो आसमानों में और जो जमीन में, इल्ला मन शाए अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह ताला चाहे। अब सबसे पहली तो ये बात कि सूर फूंका जाएगा कयामत के दिन, जब कयामत कायम होगी सूर फूंका जाएगा, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक पलक झपकने में कयामत आ जाएगी, एक से इसका क्या मतलब होता है एक पलक झपकने में कयामत आ जाएगी, यानी ये नहीं मतलब कि अभी हम बैठे हैं तो एक पलक झपकने में कयामत आ जाएगी, वो अल्लाह आलम वो तो कब आनी है, जब भी आएगी तो जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि जैसे कई महीने लग जाए, अब आहिस्ता आहिस्ता कयामत आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, बल्कि क्या होगा, तब इतनी तेजी से आ जाएगी और इतनी अनएक्सपेक्टेड होगी कि किसी ने कपड़ा, जो मैंने पहले आपको हदीस बताई हुई है कि कपड़ा फैलाया हुआ है और वो उसको अभी अभी आपस के अंदर वो हो रहा है, सौदा हो रहा है, अभी सौदा हुआ नहीं और उसने उसको लपेटा भी नहीं, अभी सौदे की बात हो रही है, उसको लपेटने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, इधर सूर पुंका जाएगा उधर क्यामत शुरू हो जाएगी। एक बंदा निवाला खाने लगा, वो मुंह तक लेके जा रहा है, रास्ते में है, मतलब हाथ उठाया हुआ है, अभी मुंह में डालेगा नहीं कि कयामत कायम हो जाएगी। ये वो फरिश्ता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपने मुंह के अंदर सूर पकड़े हुए है, इसराफील अलैहिस्सलाम, और वो अपनी नजरें अर्श के ऊपर लगाए हुए है और सर झुकाए हुए है, नजरें ऊपर है, आप तो सोचे ताजीम कितनी है और खौफ कितना है कि सूर मुंह में है, जब से अल्लाह हु अकबर, जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया वो इस तरह सूर लिए में, ये नहीं करते कि साइड पे सूर रख दें, ये नहीं कर रहे भाई, जब अल्लाह का हुक्म आएगा फौरन उठा लेंगे, उनको कौन सी कितनी देर लगनी भाई, तो 1 सेकंड लग जाएगा शायद, तो वो जल्दी से उठा लेंगे, फरिश्ते ही है ना। नहीं, इतनी सी भी देर ना लगे, इसलिए मुंह में पकड़ा हुआ है, सर झुका हुआ है, नजरें ऊपर को है और कान लगे हुए कि किस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाए और सूर में फूंक दूं। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, इधर हुक्म आए उधर मैं कर दूं, या अल्लाह हमें ऐसी फरमाबरदारी नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं कि सूर फूंकने वाला है फरिश्ता, सूर अपने मुंह में दबाए खड़ा है, और अल्लाह के हुक्म का मुंतजर है। सोच ले फरिश्तों की इताअत का आलम और उनके खौफ का हाल, और ये कोई छोटा फरिश्ता नहीं, ये इसराफील अलैहिस्सलाम है, बड़े फरिश्तों में से जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, ये बड़े बड़े फरिश्ते हैं, उनके खौफ का आलम ये है, वो इंसान क्या चीज है। इंसान क्या चीज है, अल्लाह के हुक्म पढ़ता भी है एंड रिलैक्स्ड, और आगे से कहता है हमारे तो खानदान में ये नहीं होता, मैं क्या करूं, हमारे तो इसमें ये नहीं होता, हम तो ये नहीं करते, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं। हमारे तो पीर साहब नहीं ये इसको मानते, हमारे तो इमाम साहब ने इसका मना किया, हमारी तो बरादरी ऐसा नहीं करती, मेरे शौहर तो इजाजत नहीं देते इसकी, पूछने आ जाते हैं सवाल के, मेरे शौहर नहीं इजाजत देते, आप बताएं मैं क्या करूं, शौहर की इजाजत चाहिए अल्लाह के हुक्म के आगे। कभी कहते हैं बच्चे नहीं इजाजत देते, बच्चे नहीं मानते, क्या करें, आजकल तो कोई और करता ही नहीं है तो फिर हम भी कैसे करें, आजकल तो यही सब चल रहा है, यानी कितनी जसारतें हमारी। किसी ने कहा आके कि मैं हिजाब कैसे लूं, मेरे तो खानदान में भी नहीं किसी ने लिया, ना मेरी अम्मी लेती ना मेरी नानी लेती, कोई भी नहीं लेता, तो मैं कैसे लूं। अब खुद मैं सोच रही थी कि ऐसी माँ और ऐसी नानी की भी कितनी पूछ होगी कि सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर के वो अपना गुनाह जारिया छोड़ के जा रही है, वो बच्ची की ने किसकी मिसाल दी, क्या तुमको पता भी ना हो कि ये हमारी मिसालों को दे रही है, तो कितनी बड़ी जुर्रत है ना हमारी, ये फरिश्ते इतने बड़े बड़े अल्लाह से ऐसे डरते हैं, और हमारी जुर्रतें देखें, हमारे दिल के अंदर अल्लाह के हुक्मों की कोई हैबत नहीं। तो जब ऐसा सूर फूंका जाएगा, फसाए का बेहोश हो जाएंगे जो भी आसमानों में, और जो भी जमीन में, आसमानों में कौन है, जो भी फरिश्ते हैं ये, और जमीन में कौन है, इंसान ही तो नहीं है ना, हर चीज यानी जो भी कोई उस वक्त जिंदा होगा, कई लोग तो मर ही चुके हैं ना, जो भी जिंदा होगा वो सब बेहोश हो जाएंगे, कौन बचेगा बेहोशी से, इल्ला मन शाअ अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहे। अब इसमें कोई वजाहत नहीं की गई कि अल्लाह कोई बेहतर पता है कि कौन, हमें इससे कुछ इतनी खुरेद की जरूरत नहीं है। हाँ बाज़ उलमा ने लिखा कि जन्नत की हूरें या जन्नत के गुलाम वो इसे रहेंगे मुस्तस्ना, बाज़ ने कहा कि नहीं फरिश्ते, बाज़ ने कहा कि ये जो बड़े बड़े चार फरिश्ते हैं ये नहीं, इनको नहीं, ये एक तरह मौत ही है ना कि मौत आ जाएगी सबको, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन बचा होगा। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं उठूंगा जिस वक्त दूसरा फूंका जाएगा, तो सबसे पहले मैं उठूंगा तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला के अर्श का पाया पकड़े खड़े होंगे, तो मुझे नहीं पता कि क्या वो मेरे से पहले उठे या क्या उनके ऊपर ये बेहोशी का नुस्खा आया ही नहीं। तो ये एक हमें हदीस मिलती है, लेकिन अदरवाइज मन शाअ अल्लाह, जिसको अल्लाह चाहे, वल्लाहु आलम के वो कौन लोग होंगे, अगर बाकी जो भी आसमान और जमीन में है सब खत्म हो जाएंगे, और कैसे होगा, ये बस गर्दनें लुढ़क जाएंगी, गर्दन लुढ़क जाएगी, इतनी सी बस लगना, इंसान है क्या चीज ना, आप खुद सोचे जरा सी लाउड वॉल्यूम पे, अब ये तो अल्लाह ताला की, चूंकि अल्लाह ताला अल कय्यूम है, उसने हमें सस्टेन करना है, उसने हमें रखना है, वो हमारा रब है, हमारा पालने वाला है, तो उसने ऐसी चीजों से हमें महफूज रखा, वरना एक फरिश्ते की चीख से ही इंसान का दिल फट जाता है और खत्म हो जाता है, सिर्फ फरिश्ते की आवाज, इतनी सिर्फ आवाज ही ऊंची हो जाए ना, कुछ भी नहीं किया, कोई फौजें नहीं भेजी, कोई लड़ने के लिए नहीं आया, कोई किसी ने मारा नहीं इंडिविजुअली किसी को, बस सिर्फ आवाज बाज सुन के वहीं गिर गए, तो ऐसी कौम हलाक हुई है ना, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, इंसान कोई भी चीज नहीं है ऐसी। तो सूर की आवाज जो होगी वो ऐसी होगी जो मुसलसल होगी हत्ता के सब खत्म हो जाएंगे, और अचानक होगी, और ये भी कि ये क्या पहला सूर है, या कुरान करीम में ही हमें दूसरी जगह पर तीन सूर फूंके जाने की भी बात पता चलती है। पहला नफका जो है उसके अंदर फजा का जो है घबराहट, जिसे आसमान और जमीन वाले सारे घबरा जाएंगे, इसका मतलब कयामत जो छोटी चीज नहीं है वो इस जमीन पे ही नहीं आएगी, इस कायनात पे आएगी, क्योंकि आसमानों वालों के ऊपर भी इफेक्ट है। दूसरा नफका ये है जिसका यहां पे जिक्र हुआ, बेहोशी का, जिसमें मौत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे सब। तीसरा नुक्का, सब खड़े हो जाएंगे, जिसको यहां पे नुक्का उखरा कहा गया। तो तीन होंगे या दो होंगे, कई पहले और दूसरे को एक ही करते हैं और कई इनको अलग अलग करते हैं। तो हमें पहले नुक्के की भी जिक्र मिलता है सूरह हज में भी, आपने पढ़ा है ना कि कैसे घबराहट का होगा, कैसे माँ बच्चे को भूल जाएगी, दूध पीते बच्चे को, कैसे अल्लाह ताला माफ करे बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला की ये भी एक कुदरत है कि एक आवाज से ही पूरी कायनात के अंदर हलचल मच जाएगी, पूरी कायनात हिल जाएगी, हत्ता के फरिश्ते तक भी। तो ये कोई आसान बात नहीं है। और जो आखिरी नुफा होगा, चाहे वो तीसरा कह ले या दूसरा कह ले, लेकिन जो आखिरी नुफा होगा उसके ऊपर जो सबने खड़े होना है, तो वो कितनी देर बाद होगा ये किसी को नहीं मालूम। अबू हुरैरा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस कि वो नुफा 40 के बाद होगा, 40 के बाद। तो लोगों ने पूछा क्या मतलब 40 साल, 40 दिन, 40 महीने, क्या 40 फॉट? तो वो उनको याद नहीं था, लेकिन सुभान अल्लाह में उनकी दयानतदारी के ऊपर हैरान हूं कि देखिए एक बंदा खुद ही सोच रहे हैं, जैसे हमारे जैसे तो ऐसे अल्लाह माफ करे हम ऐसे ही बना लेते हैं कि फलाने ने ये कहा, फलां का ये कॉल है, फलां की ये है। कुछ लोग तो हदीसें भी घड़ने से नहीं हटते, वो ऐसे ही हदीसें बना लेते, ऐसे कहा होगा ना तो उसके ऊपर ही बना लेना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये फरमाया मुझे नहीं पता, गैस भी नहीं किया, कुछ एज्यूम भी नहीं कर लिया। अल्लाहु अकबर। तो सुम्मा नुफिखा फी उखरा फइज़ा हुम क़ियामुन यन्ज़ुरून। फिर जब नुफ़ा उखरा दूसरी दफा का नुफ़ा फूका जाएगा, तो फौरन से हुम क़ियामुन यन्ज़ुरून, वो खड़े होंगे। क़ियामत भी इसी से है ना, इसी लफ्ज़ से क़ियामत का लफ्ज़ है क़ियाम, क्योंकि क़ियामत में भी क़ियाम ही करना है ना, जैसे हम नमाज में क़ियाम करते हैं। यन्ज़ुरून, देख रहे होंगे, सब चीजें नजर आने लगेंगी। तो जो जिस तरह से भी दुनिया में जिस हालत में भी मरा था, चाहे वो कब्र के में मिट्टी में गया, चाहे वो समुद्र में डूबा, चाहे उसको किसी जानवर ने खाया। याद रखिए लोग पूछते हैं कब्रों से कैसे उठेंगे, कब्रों में सारे तो नहीं दफन होते, कोई जल के मर गया उसकी तो बिल्कुल ही राख ही उड़ गई, जो जानवर के पेट में गया वो भी तो नहीं पता कि कहाँ चला गया। वो जहां भी गया वहीं से उठ खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। तो ये उस दिन का मंजर है कि उस दिन वो खड़े हो जाएंगे और देख रहे होंगे। जब वो खड़े होंगे ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि देखे, आप खुद सोचे ना कितने लोग चले गए हमारी जिंदगी में, कोई हमारे प्यारे भी होंगे, कोई हमारे दोस्त अहबाब, किसी के वालदैन। अब क्या अगर आज वो आ जाए तो इंसान उनके साथ बैठ के कितनी देर तो गपशप ही करता रहे, बातें करता रहे, इधर की पूछ रहा उधर की। खुद सोचिए कि वो दिन कैसा होगा, कोई ऐसे उठेगा देखेगा। ये वो जो हमारे जिनके मिलने की तड़प होती है, इंसान कहता है हाय वो फलां मिल जाए मुझे, वो फलां, हाय काश मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाती, हाय इंसान परवाह भी नहीं करेगा। हर इंसान दौड़ रहा होगा ऐसे जैसे उसको कोई लेके पीछे से भगा रहा है, दौड़ रहा होगा एक ही आवाज की तरफ। हालांकि उसको ये पता है कि जहां पे मैं मैदाने माशर में जमा होने लगा वहां पे कोई मेरे लिए कोई खैर नहीं रखी हुई, वो बड़ा खौफनाक मंजर है, लेकिन वो फिर भी दौड़ेंगे। इस दिन कोई ये नहीं करेगा कि चलो अच्छा वो मुझे नजर आ गई, मैं जरा इससे ही बातचीत कर लूं, हाल अहवाल पूछ लूं, अच्छा फिर तुम्हारे साथ क्या गुजरी, अच्छा कब्र में तुम्हारे साथ क्या होता था, अच्छा मैंने तो तुम्हें ये सारी बातें कहनी थी। यहाँ पे दुनिया में मिल जाए कोई बिछड़ा हुआ तो कितने कितने
देर इंसान बातें करता रहता है, बातें नहीं खत्म होती, कोई बात नहीं करेगा, कोई किसी साथ बैठेगा नहीं, हाल नहीं पूछेगा, कोई किसके ऊपर तवज्जो तक नहीं करेगा। और ये भी नहीं कि हम हमने उधर नहीं जाना, हम तो उधर पीछे भागे, कहीं जाके छुपते हैं जाके, हम हमें बचाओ इससे, नहीं सब भाग रहे होंगे, सब बेतहाशा भाग रहे होंगे, चलेगा भी नहीं कोई, बेतहाशा भाग रहे होंगे और बेकाबू होके भाग रहे होंगे, अपने ऊपर नहीं काबू होगा कि कहीं और अपने आप को ले जाए। अब देखें ये कितना बड़ा हादसा होगा इस कायनात में, ये आसमानों की मखलूकात का हमें तो पता भी नहीं है ना कि क्या क्या है, पर जो भी है वो भी गिर के बेहोश हो रही है, जमीन में भी सारे बेहोश हो गए, सबकी फसल कट गई, सिर्फ अल्लाह का फैसला आ गया तो अब किसी की नहीं चल रही, और उसके बाद पता नहीं कब तक इंसान मरे रहेंगे, ये भी नहीं पता, 40 साल है या 40 सदियां हैं, वल्लाह आलम, 40 अल्लाह के हाँ के दिन है कि दुनिया के दिन है, ये भी नहीं हमें पता, जब तक अल्लाह चाहे। देखिए ना, आप इससे अल्लाह की कुदरत को नहीं पहचानते, आप ये नहीं सोचते कि मैं क्या चीज हूं, उस वक्त कोई खड़ा होकर ये कहे ना मैंने नहीं जाना, इतने दिन के लिए हम मरे पड़े रहे, हमारे आखिर फैसले भी तो होने चाहिए, पता नहीं कितनी सदियां वल्लाहु आलम गुजर जाए, कितने जमाने गुजर जाए, बेबस है सब इंसान, और फिर इंतजार की घड़ियां कब खत्म हो, जब अल्लाह ताला दोबारा, क्योंकि मौत तो सबको है सबको, फिर अल्लाह ताला कब इनको फरिश्तों को जिंदा करे, कब फिर दोबारा नुखा फूंका जाएगा, इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी, अब सूर में फूंका गया, अब इंसानों की दोबारा पैदाइश हो गई, अब सब खड़े हो गए अपनी कब्रों से, जिधर जिधर भी थे उधर खड़े हो गए, सब हैरान और परेशान खड़े हैं, आज सबको अल्लाह की बड़ाई का एहसास हो रहा है, और खत्म हो गया सूरज, खत्म हो गया चांद, तारे झड़ गए, मंजर बदल गए, क्या की क्या, जमीन तो ऐसे होगी जैसे एक चांदी ही होती है, मैदे की रोटी की तरह फ्लैट बिल्कुल, ना कोई उसमें दरख्त, ना कोई उसके अंदर टीला, ना कोई पहाड़, ना कोई समंदर, कुछ भी नहीं है, और पहले आदमी से लेके आखिरी तक उसी में है, और क्या अंबिया और क्या औलिया, और हम सोचते हैं अल्लाह हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें तो फिर हम क्या करेंगे, अल्लाह उस दिन तो किसी को किसी की पड़ी ही नहीं होगी, वहां पे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हशर के मैदान में होंगे, लेकिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी भी है, हर एक भागा जा रहा, किसी को किसी का ख्याल ही नहीं, देख रहे होंगे लेकिन भागते चले जा रहे हैं एक ही आवाज पे, ला कितना हैबतनाक दिन होगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह।